एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही खास उपन्यास की, मिसेस डैलोवे, और इसकी लेखिका हैं वर्जीनिया वुल्फ।
जी हाँ, 20वीं सदी की बहुत बड़ी लेखिका, मॉडर्निज्म जिसे कहते हैं, आधुनिकतावाद, उसकी वो एक अहम कड़ी थी।
बिल्कुल, और उनका लिखने का अंदाज, वो किरदारों के मन में उतर जाना।
हाँ, वो बाहरी एक्शन से ज्यादा अंदर क्या चल रहा है उस पर फोकस करती थी, और वो चेतना प्रवाह वाली तकनीक, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस।
सही कहा। ये उपन्यास मिसेस डैलोवे 1925 में आया था, और इसकी सेटिंग है पहला विश्व युद्ध खत्म होने के कुछ ही साल बाद का लंदन, जून 1923 का सिर्फ एक दिन।
सोचिए, सिर्फ एक दिन की कहानी, पर उस एक दिन में वुल्फ ने कितना कुछ समेट लिया है। समाज पर युद्ध का असर, लोगों के मन की उथल पुथल, सब कुछ।
तो आज हम इसी एक दिन की कहानी में गहरे उतरेंगे, किरदारों को समझेंगे, उनके सफर को देखेंगे।
बिल्कुल, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये उपन्यास आज भी इतना प्रासंगिक क्यों है।
कहानी शुरू होती है क्लैरिसा डैलोवे से। 51 साल की है, लंदन के उच्च वर्ग की महिला, और वो उस शाम होने वाली अपनी पार्टी की तैयारी कर रही हैं।
और वो पहली लाइन याद है, मिसेस डैलोवे ने कहा कि वो फूल खुद खरीदेंगी, सुनने में कितनी आम बात लगती है ना?
हाँ, पर वहीं से सब शुरू होता है, एक साधारण सा काम, फूल खरीदना। और जैसे ही वो लंदन की सड़कों पर निकलती हैं, उनका मन गोते लगाने लगता है, वर्तमान से अतीत में, अपनी जवानी के दिन, बोटिन की यादें, पीटर, सैली, सब घूमने लगता है।
ये वुल्फ का जादू है, वो हमें सिर्फ बाहर की दुनिया नहीं दिखाती, बल्कि किरदार के मन के अंदर ले जाती हैं।
पर कहानी सिर्फ क्लैरिसा की नहीं है, उसी शहर में एक और कहानी चल रही है, सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ की।
अच्छा, सेप्टिमस?
हाँ, वो नौजवान सैनिक।
हाँ, जो युद्ध से लौटा है, पर वो पूरी तरह टूट चुका है, जिसे आज हम PTSD कहते हैं, शायद वैसा ही कुछ, शेल शॉक।
और कमाल की बात यह है कि क्लैरिसा और सेप्टिमस कभी मिलते नहीं हैं।
मिलते नहीं, पर उनके रास्ते जैसे टकराते हैं शहर में, उनकी चेतनाएं कहीं ना कहीं जुड़ी हुई लगती हैं। सेप्टिमस अपने मरे हुए दोस्त इवांस को देखता है, उसे अजीब आवाजें सुनाई देती हैं।
एक तरफ क्लैरिसा है जो सामाजिक दायरे में अपनी पहचान खोज रहे हैं, और दूसरी तरफ सेप्टिमस जो मतलब
एक खुली लड़ाई लड़ रहा है।
हाँ, समाज से भी और अपने अंदर के डर से भी।
उसकी पत्नी है रेजिया, इटली से आई है, वो बेचारी समझ नहीं पाती कि उसके पति को क्या हो गया है।
तो ये उपन्यास का कोर है ना,
बाहरी दुनिया और भीतरी सच्चाई का टकराव।
बिल्कुल, और क्लैरिसा की पार्टी वो जैसे एक मंच बन जाती है जहाँ ये सब कुछ आके मिलता है, निजी दुनिया, सार्वजनिक दुनिया, यादें, तनाव।
और वहीं कुछ ऐसा होता है जो क्लैरिसा को हिला देता है।
जी, चलिए पहले क्लैरिसा को थोड़ा और समझें। बाहर से तो वो परफेक्ट होस्टेस है, सांसद रिचर्ड डैलोवे की पत्नी,
पर अंदर
अंदर क्या चल रहा है?
अंदर तो एक कश्मकश है, शक है, क्या जिंदगी ऐसी ही होनी थी, क्या रिचर्ड सही चुनाव था, या फिर वो जोशीला पीटर वॉल्च।
हाँ, पीटर वॉल्च और उसकी ये पार्टियां, आप कह रहे थे ये सिर्फ पार्टियों नहीं है।
नहीं, क्लैरिसा के लिए ये इसका ऑफरिंग है, जैसे वो लोगों को जोड़कर जिंदगी के बिखराव में एक पल की सुंदरता, एक जुड़ाव पैदा करना चाहती है, ये उसका तरीका है कुछ रचने का।
तो उसकी यात्रा असल में मन की यात्रा है, अतीत की ओर।
हाँ बिल्कुल, वो मौत के बारे में सोचती है, अपनी पहचान के खो जाने के डर से जूझती है।
और सेप्टिमस, उसे क्लैरिसा का अक्स क्यों माना जाता है?
क्योंकि वो क्लैरिसा की दबी हुई चिंताओं और डर का जैसे चरम रूप है। क्लैरिसा समाज में रहकर जूझ रही है, सेप्टिमस समाज से टकरा रहा है। वो युद्ध में गया था आदर्शों के लिए, लौटा तो पूरी तरह बिखरा हुआ।
उसे लगता है उसने कोई पाप किया है।
हाँ, और वो मतिभ्रम, इवांस का दिखना, और जब वो डॉक्टरों के पास जाता है, डॉक्टर होम्स, सर विलियम ब्रैडशॉ,
वो तो उसे और तोड़ देते हैं।
बिल्कुल, वो उसके दर्द को समझते ही नहीं, कहते हैं अनुपात की कमी है, उसे ठीक करने के नाम पर उसकी आत्मा को कुचलना चाहते हैं। ये डॉक्टर उस सिस्टम के प्रतीक हैं जो इंसान को बस फिट करना चाहता है, समझना नहीं।
और सेप्टिमस की लड़ाई इसी सिस्टम से है, अपनी पहचान बचाने की।
जी, उसका अंत दुखद है, पर वो एक तरह का विद्रोह भी है, अपनी आत्मा को बचाने का आखिरी हताश प्रयास।
अब बात करते हैं पीटर वॉल्श के। वो भारत से लौटा है, क्लैरिसा से मिलने आता है।
हाँ, 5 साल बाद। पीटर, वो बहुत भावुक है, थोड़ा चिड़चिड़ा भी, रोमांटिक भी, अपनी जिंदगी से खुश नहीं है, और क्लैरिसा के लिए उसका प्यार शायद अब भी है।
उसकी वापसी क्लैरिसा को क्या सोचने पर मजबूर करती है?
वो रास्ता जो उसने नहीं चुना, पीटर उसे याद दिलाता है उस जिंदगी की जो वो जी सकती थी। और पीटर खुद भी कंफ्यूज्ड है, वो पार्टियों की बुराई करता है पर खुद क्लैरिसा की पार्टी में जाता है।
हाँ, वो क्लैरिसा को पारंपरिक कहता है पर खिंचा भी उसी की तरफ आता है।
वो भी शहर में घूमता है, यादों में खोया रहता है, अपनी नाकामियों के बारे में सोचता है। वो क्लैरिसा के लिए एक मतलब आईने जैसा है जो उसे अपने अंदर देखने पर मजबूर करता है।
और भी तो किरदार है, रिचर्ड डॉलोवे क्लैरिसा के पति।
हाँ, रिचर्ड सीधे नेक पर अपनी भावनाएं जाहिर नहीं कर पाते, वो स्थिरता के प्रतीक हैं।
फिर सैली सेटिन जवानी में कितनी विद्रोही थी।
बिल्कुल, सिगार पीना, बाग में नंगे पांव दौड़ना, और अब वो लेडी रोसेटर है, 5 बच्चों की माँ, एकदम पारंपरिक। ये दिखाता है कि समय कैसे आदर्शों को बदल देता है।
क्लैरिसा और सैली का वो बोटन वाला चुंबन, वो पल क्लैरिसा को आज भी याद है।
हाँ, वो एक शुद्ध जुड़ाव का पल था, शायद उस संभावना का प्रतीक जिसे समाज ने पनपने नहीं दिया। और फिर रेजिया, सेप्टिमस की पत्नी, उसका अकेलापन, उसका दर्द।
सही कहा, वो उन लोगों की आवाज है जो मानसिक बीमारी से जूझ रहे लोगों के साथ चुपचाप सब सहते हैं।
चलिए दिन के घटनाक्रम पर वापस आते हैं। सुबह क्लैरिसा फूल लेने निकली, मन अतीत में है
जी।
तभी सड़क पर कार का बैकफायर,
एक धमाका, और वो आवाज जैसे कई लोगों को एक पल के लिए जोड़ देती है। क्लैरिसा सेप्टिमस।
हाँ, और रीजेंस पार्क में सेप्टिमस है रेजिया के साथ। वो उस आवाज से डर जाता है, उसे युद्ध याद आता है, मति भ्रम बढ़ जाते हैं।
और तभी पीटर वॉल्श पहुंच जाता है क्लैरिसा के घर, सालों बाद आमना सामना। कैसा रहता है वो?
बहुत तनाव भरा, पुरानी बातें उठती हैं, वो इनकार किया हुआ शादी का प्रस्ताव, एक अजीब सा खिंचाव है दोनों के बीच। पीटर क्लैरिसा के लाइफस्टाइल की आलोचना करता है,
दोनों बेचैन हो जाते हैं।
हाँ, पर पीटर के जाने के बाद क्लैरिसा को अचानक अपने पति रिचर्ड और अपनी जिंदगी के लिए एक गहरा अपनापन महसूस होता है, जैसे उसे अपनी जमीन का एहसास होता है।
दोपहर में पीटर शहर में घूम रहा है, अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहा है, और सेप्टिमस
और रेजिया जाते हैं सर विलियम ब्रैडशॉ से मिलने, वो मशहूर डॉक्टर।
ये मुलाकात तो बहुत अहम है।
बहुत ज्यादा। ब्रैडशॉ वो सत्ता और ठंडे तर्क का प्रतीक है, वो सेप्टिमस के गहरे दर्द को सिर्फ लैक ऑफ प्रोपोर्शन कहकर खारिज कर देता है।
और इलाज क्या बताता है?
पत्नी से दूर, देश में एकांत, आराम। सेप्टिमस के लिए ये इलाज नहीं, ये तो उसकी आत्मा को कैद करना है, उसे समाज के ढर्रे में फिट करने की कोशिश। ये मुलाकात सेप्टिमस को पूरी तरह तोड़ देती है।
और इसी दौरान रिचर्ड डॉलोवे, वो क्लैरिसा से प्यार का इजहार करना चाहता है।
हाँ।
उसे लंच के बाद अचानक बहुत शिद्दत से महसूस होता है कि उसे क्लैरिसा को बताना चाहिए कि वो उसे कितना प्यार करता है। वो घर जाता है पर
कह नहीं पाता,
बस गुलाब ले आता है। ये छोटा सा सीन उनके रिश्ते का पूरा सच बयान कर देता है, प्यार है पर संवाद नहीं। क्लैरिसा को फिर अकेलापन घेर लेता है।
देर दोपहर सेप्टिमस अपने घर पर है, कुछ पल की शांति। हाँ, वो रिजिया के साथ है, उसकी टोपी बनाने में मदद कर रहा है। एक बहुत ही नाजुक प्यारा सा पल है वो, जैसे एक झलक उस जिंदगी की जो हो सकती थी। पर तभी
डॉक्टर होम्स आ जाता है।
हाँ, वही पहला डॉक्टर जिसने कहा था कि सेप्टिमस को कुछ नहीं हुआ, बस डर गया है। सेप्टिमस के लिए होम्स उस क्रूर दुनिया का प्रतीक है जो उसे समझना नहीं चाहती, बस काबू करना चाहती है।
और फिर सेप्टिमस वो कदम उठा लेता है।
उसे लगता है कि ये लोग उसे ले जाएंगे, उसकी आत्मा को खत्म कर देंगे। अपने अंदर की उस सच्चाई को, उस पहचान को बचाने के लिए वो खिड़की से कूद जाता है, ठीक उसी वक्त जब डॉक्टर होम्स दरवाजे पर है।
ये आत्महत्या से ज्यादा एक बयान है ना?
बिल्कुल, व्यवस्था के खिलाफ अपनी आत्मा को बचाने का एक त्रासद पर शक्तिशाली बयान।
और कहानी पहुंचती है शाम को क्लैरिसा की पार्टी में। पार्टी चल रही है, सफल है, बड़े बड़े लोग आए हैं।
हाँ, प्रधानमंत्री तक।
क्लैरिसा परफेक्ट मेजबान है, लोगों को जोड़ रही है, पर अंदर से वो खालीपन महसूस कर रही है। पीटर भी है, सैली भी है, अतीत और वर्तमान सब वहीं मौजूद है।
और तभी ब्रैडशॉ पति पत्नी आते हैं देर से
जी।
और सर विलियम बातों बातों में बड़े कैचुअल तरीके से बताते हैं कि उनका एक मरीज था, नौजवान, उसने खुदकुशी कर ली, इसीलिए उन्हें देर हो गई।
जैसे कोई बड़ी बात ही ना हो। क्लैरिसा ये सुन लेती है और यहीं कुछ बदलता है।
हाँ, ये खबर उसे डराती नहीं, बल्कि उसे उस अजनबी लड़के से एक अजीब सा गहरा जुड़ाव महसूस होता है। वो पार्टी से हटकर एक शांत कमरे में चली जाती है।
वो समझ जाती है कि उसने ऐसा क्यों किया।
वो समझ जाती है कि उसने अपने अंदर की किसी कीमती चीज को बचाने के लिए यह किया, दुनिया की बेरुखी के खिलाफ, वो उसकी मौत को एक विद्रोह के रूप में देखती है।
ब्रैडशॉ जैसे लोगों के खिलाफ एक जवाब।
बिल्कुल, और सेप्टिमस की मौत के आईने में वो अपनी जिंदगी को देखती है, अपने समझौते, अपनी मौत का ख्याल। उसे एहसास होता है कि जिंदगी को चुनना, पार्टी देना, लोगों को जोड़ना, ये भी उसका एक अर्पण है।
ये सहानुभूति, ये जुड़ाव उसे एक नई ताकत देता है।
हाँ, वो मेहमानों के पास लौटती है। अब वो खाली नहीं है, उसमें एक नई समझ है। और उपन्यास खत्म होता है पीटर की नज़र से। वो क्लैरिसा को देखता है और महसूस करता है आतंक और परमानंद, क्योंकि वो वहां थी।
For there she was.
कमाल है, ये उपन्यास इतने सारे थीम्स को छूता है। पहला तो यही, बाहरी दिखावा और अंदर की सच्चाई।
हाँ, क्लैरिसा इसी का प्रतीक है। हम दुनिया को क्या दिखाते हैं और असल में अंदर क्या महसूस करते हैं।
और अकेलापन, इतने लोगों के बीच भी कितना अकेलापन है, संवाद की कमी।
सही कहा, रिचर्ड का प्यार न जताना, पीटर और क्लैरिसा का एक दूसरे को न समझ पाना, सेप्टिमस का अकेलापन, ये शायद इंसानी हालत का हिस्सा है।
समय का बहना, यादों की ताकत, ये भी बहुत अहम है। बिग बैंग की घंटियां, हाँ, वो बाहरी समय का प्रतीक है, टिक टिक करती हुई। पर किरदारों का मन अपने भीतरी समय में जीता है, जहां अतीत कभी दूर नहीं होता। और वो शेक्सपियर की लाइन, फियर नो मोर द हीट ऑफ द सन,
जो बार बार आती है, मौत शांति दुख से मुक्ति का प्रतीक।
और समाज की आलोचना तो है ही, खासकर वो मेडिकल सिस्टम, डॉक्टर होम्स, ब्रैडशॉ, वो दिखाते हैं कि कैसे व्यवस्था इंसानियत पर हावी हो जाती है।
सेप्टिमस का अंत इसी के खिलाफ एक विद्रोह है।
बिल्कुल, और फिर जीवन मृत्यु और अर्थ का सवाल। क्लैरिसा रोजमर्रा में अर्थ खोजती है, सेप्टिमस बड़े सत्य की तलाश में है, और अंत में मौत चुनता है।
पर वुल्फ दिखाती हैं कि ये दोनों जुड़े हुए हैं। सेप्टिमस की मौत क्लैरिसा को जिंदगी की कीमत समझाती है।
और हाँ, महिलाओं की सीमित दुनिया का भी जिक्र है। क्लैरिसा की पहचान पति से है, शैली का बदलना, वो समलैंगिक भावना की झलक जिसे समाज दबा देता है।
वुल्फ के लिखने की शैली, वो चेतना प्रवाह, या जिसे मुक्त अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं, वो कैसे काम करता है पाठक के लिए?
वो आपको सीधे किरदार के दिमाग में ले जाता है। आप जैसे उसके साथ ही सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, बिना किसी फिल्टर के। बहुत इंटीमेट अनुभव होता है ये।
और वो प्रतीक, बिग बेन, फूल, खिड़कियां, पानी,
हाँ, ये सब कहानी को और परतें देते हैं, गहराई देते हैं।
इस उपन्यास को पढ़ना मतलब सिर्फ कहानी जानना नहीं है, ये एक अनुभव है।
हाँ, आप किरदारों के मन में रहने लगते हैं। आपको एहसास होता है कि हर इंसान के अंदर कितनी कहानियां, कितने संघर्ष चल रहे हैं।
ये साधारण को असाधारण बना देता है। एक दिन, एक याद, एक फूल खरीदना, सब कितना मायने रख सकता है।
और ये जीवन की खूबसूरती और उसके दुख दोनों को एक साथ दिखाता है। ये कोई आसान जवाब नहीं देता,
बल्कि सवाल ज्यादा छोड़ जाता है। जिंदगी का मोल क्या है, हम खुद को और समाज को कैसे बैलेंस करें, क्या हम सच में कभी एक दूसरे को समझ सकते हैं?
मेरे ख्याल से ये हमें सिखाता है कि हमारी भीतरी दुनिया बहुत अहम है,
और शायद सबसे बड़ी लड़ाइयां चुपचाप ही लड़ी जाती हैं।
और जीवन का अर्थ सिर्फ बड़े कारनामों में नहीं, बल्कि रोजमर्रा के जीने में, एक फूल खरीदने में भी मिल सकता है।
वुल्फ हमें सोचने पर मजबूर करती हैं, क्या आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपने अंदर की दुनिया को समझने के लिए उतना वक्त निकालते हैं?
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।